कुछ महीनों से चैतन्य चरितामृत का ये जो अध्याय है जिसके बारे में सुन रहे हैं कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया और चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर में आ गए। तो पिछले बार हमने सुना था कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के उपरांत जब शांतिपुर पहुंचे तो जो नवद्वीप के निवासी हैं उनके अंदर कितनी अधिक लालसा थी चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए। तो मैंने पिछली बार चैतन्य भागवत से वो पढ़ा था कि नदी को किस प्रकार से पूरे नवद्वीप के भक्तों ने पार किया था और वृंदावन दास ठाकुर ने लगभग कई सारे श्लोकों में केवल इसी का वर्णन किया है कि नवद्वीप वासियों के अंदर लौल्य कितना था महाप्रभु से मिलने के लिए। और इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं तत्र लौल्य मूल्य में कलम जन्म कोटि सुकृतीर्ण लभ्यते। तो भगवत प्राप्ति की यदि हम बात करते हैं भगवान के प्रति हृदय में तीव्र प्रेम जागृत करने की यदि बात करते हैं तो उसके लिए हमारे हृदय में लौल्य होना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि वो लौल्य या वो लालसा कैसे होनी चाहिए, जैसे कोई युवक किसी युवती को मिलने के लिए लालायित होता है, उसका हृदय उसको मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए, उसको देखने के लिए दौड़ पड़ता है, उसी भांति एक व्यक्ति का हृदय भगवान के प्रति लालायित हो या लौल्य से भरा हो तभी संभव है भगवान की ओर जाना या भगवान प्राप्ति की जो सफलता है उसको प्राप्त करना। तो ऐसे नवद्वीप के जो भक्त हैं उन्होंने ये देखा नहीं था कि कोई बाधा है मुझे महाप्रभु से मिलने के लिए। हमारे जीवन में हम देखते हैं कि भगवत भक्ति का जब हम अभ्यास करते हैं तो थोड़ी थोड़ी जो बाधाएं आती हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ा रोधक बन जाता है भक्ति का अभ्यास न करने के लिए। तो लेकिन नवद्वीप के निवासियों ने जब सोचा और उनको पता चला चंद्रशेखर आचार्य नित्यानंद प्रभु के द्वारा कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर अद्वैत आचार्य के घर में हैं, तो उन्होंने अपने घर के दरवाजे लगाना भी भूल गए और दरवाजे पूरा नवद्वीप ऐसे खुला था और हर एक व्यक्ति दौड़ दौड़ के गंगा के किनारे गया। वर्णन आता है लाखों लोग एक ही समय पर उस घाट में खड़े थे और कुछ ही नौकाएं वहां थी, 10-12 नौका होगी और लाखों लाखों लोग थे। तो वो लोगों ने क्या किया, सोचे इन 4-5 नौकाओं से क्या होगा, एक एक नौका पर लोग बैठे, कोई किसी के कंधे में बैठ रहा है नौका के ऊपर और पार करने की इच्छा व्यक्त कर रहा है। तो लेकिन देखा कि जैसे नौका में बैठे वो नौका उधर ही डूब गई और कुछ नौकाएं थोड़ी सी आगे गई, बीच में जाकर डूब गई। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कारण कोई भी व्यक्ति डूबा नहीं, हर एक व्यक्ति बिना नौका के उस पार हो गया। क्यों, चैतन्य महाप्रभु को मिलने की तीव्र लालसा उनके अंदर थी। तो उसी प्रकार से यदि हमारे हृदय में तीव्र लालसा है कृष्ण प्राप्ति की तो इस संसार में कोई ऐसी रुकावट नहीं है जो हमें रोक सकती है भगवत भक्ति का अभ्यास करने से या भगवान की ओर शीघ्र गति से जाने से। लेकिन वास्तव में सबसे बड़ी बाधा कोई है तो हमारा पागल मन है। सबसे बड़ी बाधा कोई है भगवत भक्ति में तो हम स्वयं ही हैं। कई बार हम भगवत भक्ति में आने के बाद भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति न होने के लिए या नहीं हुई इसके लिए हम दूसरों को दोष देते हैं, दूसरों की ओर उंगलियां उठाते हैं। लेकिन वास्तव में उन्नति न होने का एकमेव कारण है हम स्वयं ही। तो ऐसे नवद्वीप के निवासी सारे पार हो जाते हैं और पार होकर चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं और चैतन्य महाप्रभु जब अपने भक्तों को देखते हैं चैतन्य महाप्रभु खड़े हो जाते हैं उस घर में और हर एक भक्त का आलिंगन करते पर्सनली और सारे भक्त देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु में अभी परिवर्तन आ गया है। कौन सा परिवर्तन आ गया है, पहले तो उन्होंने देखा था गृहस्थ के रूप में, जब चैतन्य महाप्रभु के लंबे लंबे बाल थे, उनके शुभ्र वस्त्र आदि थे। लेकिन अभी संन्यास के बाद चैतन्य महाप्रभु को देखा कि उन्होंने अपना सर मुंडन किया है और सैफ्रॉन वस्त्र उन्होंने धारण किए हैं। भक्त दूर से जब उन्होंने देखा तो थोड़े दुखी लग रहे थे, लेकिन जैसे महाप्रभु के नजदीक गए तो सारे भक्त अत्यधिक आनंदित हुए। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु पहले से अधिक सुंदर लग रहे थे। फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को लेकर वहां कीर्तन किया। पिछले श्लोकों में आपने सुना होगा कि किस प्रकार से अद्वैत आचार्य ने अपने घर में शाम के समय में कीर्तन करवाया। सारे भक्त नृत्य कर रहे थे, मुकुंद आदि गा रहे थे, और स्वयं अद्वैत आचार्य जो इतने बूढ़े हैं वो नाच रहे थे। और नाचते हुए क्या कह रहे थे कि कही वरे सखी आज आनंद मोर। वो कहते हैं कि हे सखी, क्या कहो, मुझे इतना अधिक आनंद हो रहा है। कोई पूछे कि अद्वैत आचार्य आपको क्या आनंद हुआ है, तो अद्वैत आचार्य कहते हैं चिर दिने माधव मंदिरे मोर, कि बहुत दिनों के बाद जो भगवान कृष्ण है मेरे मंदिर, मेरे जो घर है उसमें उनका आगमन हुआ है। तो अद्वैत आचार्य को सबसे अधिक आनंद हुआ जब उन्होंने देखा कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु और उनके इतने सारे भक्त मेरे घर में विराजमान हैं। और घर में विराजमान होकर वो क्या कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बल्कि अद्वैत आचार्य ने ये सोचा नहीं कि इतने नवदीप के भक्त आएंगे, उनके लिए मैं कैसे भोजन सर्व करूंगा, इतना सारा मेरा खर्चा हो जाएगा। तो वहां महाप्रभु कहते हैं, तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, क्योंकि अद्वैत आचार्य के हृदय में उन महाप्रभु के भक्तों की सेवा करने की प्रगाढ़ भावना थी और चैतन्य महाप्रभु को आनंद प्रदान करने की भावना थी, जिसके कारण स्वयं लक्ष्मी वहां निवास कर रहे थे और किसी भी चीज की उनके घर में कमी नहीं थी। तो ऐसे अद्वैत आचार्य जब नाच रहे थे रात्रि में, कीर्तन कर रहे थे महाप्रभु आदि के साथ, तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि अरे ये केवल अद्वैत नाच रहा है। महाप्रभु देख रहे थे अद्वैत आचार्य का नृत्य। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अद्वैत आचार्य आप अभी नाचना बंद करो, अभी मुझे नाचने दो। तो चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को रोका और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्तों के बीच में गए। इसके जो पिछले दो तीन श्लोक हैं जिनको मैंने पढ़ा नहीं, उनको पढ़ता हूं। तो उन श्लोकों में कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु ने जब नाचने की बात सोची, सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने उनके जो एक सेवक है मुकुंद, चैतन्य महाप्रभु जब नाचना होता था तो अपने दो भक्तों को बोलते थे कीर्तन करने के लिए, एक थे स्वरूप दामोदर और दूसरे थे मुकुंद। और चैतन्य महाप्रभु इन्हीं दो भक्तों की कीर्तन सुनकर जोर शोर से नाचते थे। तो महाप्रभु ने कहा कि हे मुकुंद तुम अभी गीत गाओ। तो मुकुंद ने कीर्तन करना शुरू किया और जैसे मुकुंद ने कीर्तन करना शुरू किया तो चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से नाचने लगे। नाचते नाचते विकारों का वर्णन या भावों के लक्षणों का वर्णन इन श्लोकों में किया है, तो चैतन्य महाप्रभु के सारे भाव उनको प्रकट होने लगे। और मुकुंद जैसे जैसे गाते थे तो महाप्रभु फिर मुकुंद की वाणी को सुनकर अत्यधिक रोते थे। और चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के प्रति जो विराग की भावना है वो अधिक तीव्र होने लगती थी। चैतन्य महाप्रभु कहते थे, हा हा प्राण प्रिय सखी कीना है न मोरे, कानु प्रेम विष मोर तनु मन जोरे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि हे कृष्णा, आपके विरह में मेरा जो शरीर है और वो मन है वो अत्यंत पीड़ित हो रहा है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि कब मेरे जो प्राणनाथ कृष्ण है उनको मैं मिलूं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ऐसे दिव्य भाव के जो लक्षण हैं, उनको अद्वैत आचार्य के घर में प्रकट कर रहे थे और उनके जो भक्त हैं वो भी चैतन्य महाप्रभु को देखकर उदंड नृत्य करते थे और कीर्तन करते थे। तो यहाँ आप देखें कि चैतन्य महाप्रभु के जो सबसे बड़े देन है, उनकी सबसे बड़ी देन हम कह सकते हैं कि गोलोकेरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तन। हम कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने गोलोक वृंदावन से प्रेम नाम संकीर्तन लेके आए, लेकिन वास्तव में उससे भी बढ़कर चैतन्य महाप्रभु की देन है उनके जो भक्त हैं। यदि उनके भक्त नहीं है तो ये जो नाम संकीर्तन भी इस संसार में नहीं प्राप्त हो सकता। यदि श्रील प्रभुपाद जैसे भक्त नहीं होते तो मैं भी चैतन्य महाप्रभु ने बहुत बड़ा धन लेके आए हैं, लेकिन वो धन कालांतर में क्या हो गया था, खत्म हो गया था या सबके दृष्टि से अदृश्य हो गया था। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने उसी प्रेम धन को सबके सामने प्रकट कराया। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की जो सबसे बड़ी देन है वो उनके भक्त है, और इसलिए एक भक्त को अपनी भक्ति करने के लिए एक चीज के लिए सदैव उत्साहित या लालायित होना चाहिए। किस चीज के लिए? भगवान के उन्नत भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए। इसलिए श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है भक्तिस्तु भगवत भक्ता संगेन परिजायते। तो यदि कोई कहे कि मुझे अपने जीवन में भक्तों की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ सालों में मैंने सीख लिया है किस प्रकार से जप करना है, किस प्रकार से थोड़ा बहुत शास्त्रों का अध्ययन करना है, मैं अपना भक्तिमय जीवन कंटिन्यू कर सकता हूँ, लेकिन वास्तव में ऐसे व्यक्ति की क्या है, वो मूर्खता है। भक्तों का संग उतना जरूरी है जितना हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है। सांस लेना हम बंद करें तो निश्चित रूप से हम मर सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे भक्तिमय जीवन में यदि भगवान के उन्नत भक्तों का संग नहीं है तो हम भगवत भक्ति में उन्नति कर नहीं सकते और भगवत भक्ति में जीवित कदापि नहीं रह सकते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को जब शिक्षा दी तो चैतन्य महाप्रभु ने इस पर बहुत जोर दिया। सनातन शिक्षा में साधु संग सर्व शास्त्र का लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वास्तव में भगवान के भक्तों का संग हमारे लिए सबसे मूल्यवान है। इसलिए जो परीक्षित महाराज के जीवन में इतनी बड़ी विपत्ति आई थी, क्या विपत्ति आई थी, उनको तो ये पता चला था कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, तो परीक्षित महाराज ने थोड़ा भी विचार नहीं किया, बल्कि परीक्षित महाराज ने सोचा कि कृष्ण की कितनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर हो गई है, ऐसी कृपा किसी को भी नहीं मिली। क्या सोचा उन्होंने, ये कृपा है कि मुझे ये पता चला कि मेरे पास अभी 7 दिन है, ये कृष्ण की कृपा है, और ये जो शाप है वो कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है। और ऐसे परीक्षित महाराज गंगा के किनारे जाते हैं और सारे ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए उन ब्राह्मणों से 3 प्रकार के आशीर्वाद की कामना करते हैं अपने अंतिम समय में। तो वहां परीक्षित महाराज उन सारे ब्राह्मण, बल्कि वहां पराशर, गौतम, मैत्रेय मुनि, व्यासदेव, नारदा, कर्म, देवल आदि इतने सारे ऋषि मुनि आए थे सारे संसार से, उनके सामने परीक्षित महाराज नतमस्तक होते हैं, हाथ जोड़ते हैं और उनको कहते हैं कि मुझे आप 3 चीजें प्रदान करो, मैं चाहता हूं कि आप सब भक्तों के आशीर्वाद से मेरे जीवन में मुझे 3 चीजें चाहिए, यदि मुझे पुनः जन्म लेना पड़े तो किसी ब्राह्मण ने पूछा होगा, महाराज परीक्षित आपको तो पुनर्जन्म है नहीं, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो, चाह रहे हो, तो बताओ क्या 3 चीजों की आप कामना करते हो। तो परीक्षित महाराज कहते हैं पुनश्च भूयात् भगवत अनन्ते रति प्रसंगाच तदाश्रयेषु। सबसे पहले वो कहते हैं कि हे वैष्णव, भगवान, मुझे इस संसार में जन्म लेना भी पड़े तो एक चीज मेरे हृदय में प्रदान करो मुझे, क्या कि भगवान कृष्ण के प्रति बिल्कुल गाढ़ जो आसक्ति है, रति मेरे हृदय में स्थापित हो जानी चाहिए। और दूसरी चीज वो कहते हैं रति प्रसंगाच तदाश्रयेषु, और ऐसे कृष्ण का जिन भक्तों ने आश्रय ग्रहण किया है ऐसे महान भक्तों का मुझे संग प्राप्त होना चाहिए। और तीसरी चीज वो कहते हैं कि मैत्रेस्तु सर्वत्र नमो द्विजभ्य, कि जितने भी जीव हैं उनके प्रति मेरा मैत्री का भाव या समानता का भाव मेरे हृदय में बना रहना चाहिए। तो ऐसे परीक्षित महाराज भी अपने अंतिम समय में एक ही कामना करते हैं भक्तों से, और वो कौन सी कामना है कि मुझे भक्तों का संग प्राप्त होना चाहिए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा तांदेर चरण सेवे भक्त सनेवास, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मुझे पुनः पुनः जन्म भी मिले तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन फिर मैं क्या चाहता हूं, तांदेर चरण सेवी, तांदेर मीन्स पूर्ववर्ती आचार्य, पूर्ववर्ती आचार्यों की मैं सेवा में नियुक्त रहूं और जन्मों जन्मों तक मुझे क्या मिले, भगवान के भक्तों का संग प्राप्त होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखें कि भगवत भक्ति में जो सफलता का रहस्य है या कृष्ण प्राप्ति की यदि कामना है तो उसके लिए हमें केवल केवल एक ही प्रार्थना भगवान के चरणों में रखनी चाहिए कि मुझे क्या करो, आपके जो उन्नत महत वैष्णव गण है उनका संग प्रदान करो, उनके संग की कामना हमारे हृदय में होनी चाहिए। और यही चीज चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु अपनी माता सची देवी को कहते हैं। एक दिन चैतन्य महाप्रभु कपिल देव की भाव में आते हैं और अपने घर में जब सची माता उनको प्रसाद सर्व कर रही थी तो सची माता को कपिल देव की भाव में कई प्रकार की शिक्षा देते हैं, और उस शिक्षा में चैतन्य महाप्रभु एक जीव का वर्णन करते हैं कि एक जीव जब माँ के गर्भ में होता है तो सोचता क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी माता को कहते हैं कि हे माता, जब कोई जीव माँ के गर्भ में होता है तो वो सदैव कृष्ण से प्रार्थना करता है। कौन सी प्रार्थना करता है कि मुझे कहाँ कहाँ जन्म दो या मैं कहाँ जन्म नहीं लेना चाहता, वो प्रार्थना भगवान से करता है। तो जीव कहता है जिखाने तुम्हारा नहीं यशर प्रचार, जथा नहीं वैष्णवेर वैष्णव जनेर अवतार। तो जीव माँ के गर्भ में बाहर निकलने से पहले कृष्ण से प्रार्थना करता है कि हे कृष्णा, जहां आपके नाम रूप गुण लीला का प्रचार नहीं हो रहा है और जहां आपके वैष्णवों ने जन्म ग्रहण नहीं किया है वहां मुझे जन्म नहीं चाहिए। जेखाने तुम्हारे यात्रा महोत्सव नाय, इंद्रलोक है ले वो तहां नहीं चाहे। तो जीव प्रार्थना करता है कि जहां आपसे संबंधित उत्सव नहीं हो रहे हैं हे कृष्ण, या ऐसे स्थान में मुझे जन्म नहीं लेना है चाहे वो इंद्र का लोक क्यों ना हो। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपनी माता को कहते हैं कि एक जीव माँ के गर्भ में होने के बावजूद भी सदैव केवल एक ही चीज की आकांक्षा करता है, और वो आकांक्षा क्या है कि मैं तो उसी स्थान में जन्म लेना चाहता हूं जहां भगवान के जो भक्त हैं उनका निवास हो, तभी हमारा भक्तिमय जीवन सफल हो सकता है। तो कोई कहे कि भक्तों के संग में भी हम भक्तों का संग हम लाभ कर सकते हैं या साधुओं का संग हमें प्राप्त हो सकता है, तो फिर साधु व्यक्ति कौन है? कलयुग में तो साधुओं को प्राप्त करना बहुत ही दुष्कर है, इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कलयुग में कई चीजें दुर्लभ हो सकती हैं, उसमें एक दुर्लभ चीज है और वो है भगवान कृष्ण के जो भक्त है या जो उन्नत साधु है, ऐसे साधु प्राप्त करना कलयुग में दुष्कर है। इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप में नहीं आए, चैतन्य महाप्रभु एक साधु के रूप में आए इस संसार में, जो असली साधु कौन है उसकी स्थापना करने के लिए। तो श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि साधु को कैसे पहचानना चाहिए या साधु व्यक्ति कौन है। तो साधु वही है जिस व्यक्ति ने वास्तव में दो चीजों की शरण ग्रहण की है, एक है कृष्ण एक शरण और दूसरा है नाम एक शरण। फिर उसी को ही शुकदेव गोस्वामी और सूक्ष्म रूप से समझाते हैं कि कलयुग में जिस व्यक्ति ने जिस साधु ने नाम की एकमात्र शरण ग्रहण की है वो वास्तव में क्या है, महान वैष्णव है या महान साधु है। और ऐसे ही व्यक्ति के संग की कामना एक व्यक्ति को निरंतर करनी चाहिए। तो इस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ऐसे साधुओं की संगति की कामना हमें करनी चाहिए। क्यों ऐसे साधुओं की संग की कामना करनी चाहिए, क्योंकि साधुओं के संग में एक चीज की उन्नति होती है और वो है श्रद्धा। साधुओं के संग में श्रद्धा हमें प्राप्त होती है और श्रद्धा लभे जीव करे सद्गुरु विचार। इस साधुओं के संगति में व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा की प्राप्ति होती है और श्रद्धा जब स्थित हो जाती है तो व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु के बारे में सोचता है, आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करने के बारे में सोचता है, आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करने के बारे में सोचता है। तो ये साधुओं के संगति से क्या है, संभव है। और तब व्यक्ति जान पाता है कि अमी कृष्णदास, मैं कौन हूँ, कृष्ण का सेवक हूँ। तो भगवान के भक्तों का जितना अधिक हम संग करते हैं उतनी ही मात्रा में हमें अनुभव कर पाते हैं कि माया का सेवक नहीं हूं मैं एकमात्र कृष्ण का सेवक हूं। और वास्तव में साधु की तुलना सनातन गोस्वामी को जब शिक्षा देते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो साधु की तुलना चैतन्य महाप्रभु एक डॉक्टर से करते हैं, वैद्य से करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए। इस संसार में जीव बीमार अवस्था में है और कौन सी बीमारी है, उसे अविद्या की बीमारी है। अविद्या की बीमारी से उसे बाहर निकलना है तो उसे एक डॉक्टर के पास जाना होगा और वो डॉक्टर कौन है, एक साधु गण है। ऐसे साधु के पास जाकर उनका आश्रय ग्रहण करना होगा। गौरवी महाराज एक स्टोरी बताते हैं साधु किस प्रकार से वैद्य हैं। वो कहते हैं इस संसार में कौन व्यक्ति सुखी है उसका एक मापदंड है। क्या मापदंड है, जिसको रात में बहुत सॉलिड नींद आती है। मैं किसी भक्त से बात कर रहा था, वो कहते प्रभु जी नींद नहीं आ रही है, कल मुझे बता रहे थे, कहते थोड़ी सी आवाज हो जाती है तो बिल्कुल पूरी रात ऐसे जगना पड़ता है। कुछ सजेशन मुझे दे दो। मैंने कहा कान में एयरफोन डाल के सो जाओ, मेडिकल शॉप में आजकल मिलते हैं, जपा में भी भक्तों डालते हैं। तो लेकिन वास्तव में इस संसार में वो व्यक्ति सुखी है जिसको गहरी नींद का आशीर्वाद मिला हुआ है और ऐसे लोग बहुत ही कम है। गौरवी महाराज कहा करते थे एक लेक्चर में कि संसार में रात में इतने अनेक लोग दवाइयां लेते हैं नींद आने के, उन सबको इकट्ठा किया जाए तो सुमेरो से भी बड़ा पहाड़ बन सकता है, इतनी नींद की दवाइयां लोग खाते हैं। तो कहते कि ऐसा एक व्यक्ति था जिसको इतनी बड़ी बीमारी थी कि उसको नींद ही नहीं आती थी। और उसकी बीमारी क्या थी, वो गौरवी महाराज कह रहे थे कि तीन प्रकार के लोगों को नींद नहीं आती, एक है योगी, एक है भोगी और एक है रोगी। तो योगी को नींद क्यों नहीं आती, योगी में जो भी भक्ति योगी है चाहे कोई भी योगी हो उसको इसलिए नींद नहीं आती, उसको हमेशा लगता है कि मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे भगवत भक्ति में रफ्तार लानी है, बस मृत्यु अगले क्षण मेरे सामने खड़ी है। तो उसको भक्ति का अभ्यास करने में भगवत सेवा के लिए बहुत कम समय महसूस होता है। तो दिन रात वो एक करता है, मेहनत करता है, दिन रात भगवान के भजन और सेवा में लगना चाहता है। हाँ, जैसे प्रभुपाद कहा करते थे कि मैं जब सोने जाता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपना समय गवा रहा हूं। तो ये भावना एक योगी की है। और जो रोगी है, कभी उसका पेट दर्द है, तो घुटने दर्द हो रहे हैं, तो कई प्रकार के दर्द है जिनके कारण रोगी को नींद नहीं आती। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी है भोगी। भोगी वो हमेशा भोग करने के विचारों के बारे में सोचता रहता है, अपने धन के बारे में, अपनी भौतिक आसक्ति के बारे में, इंद्रिय तृप्ति के बारे में, जिसके कारण उसकी नींद उड़ जाती है और उसको भी नींद नहीं आती। तो ऐसा एक व्यक्ति एक साधु के पास गया और उन्होंने कहा कि मैंने तो सारे सब प्रकार की दवाइयों को इस्तेमाल किया है, लेकिन कोई भी दवाई मुझ पर काम नहीं कर रही है। सब प्रकार के जड़ी बूटियों को ढूंढ ढूंढ के पीस पीस के पी लिया है, लेकिन मेरी निद्रा अभी पूर्ण रूप से भंग हो गई है। तो साधु ने जैसे उसकी आंखों में डाले अपनी आंखें, देखते ही पहचान लिया ये दो कैटेगरी में नहीं आता। हाँ, ये योगी भी नहीं है, ये रोगी भी नहीं है, ये कौन है? भोगी है, जिसके कारण इसको नींद नहीं आ रही है। साधु ने कुछ बोला नहीं। साधु ने कहा ठीक है, हाँ आपकी नींद जा सकती है, आप क्या करो, शाम को हमारे आश्रम में आओ, वहां कथा होती है, तो कथा के समय पहुंच जाना, उस समय में दवाई आपको दे दूंगा। तो वो व्यक्ति शाम का इंतजार कर रहा था, तो साधु शाम को क्लास देते थे अपने शिष्यों को अपने आश्रम में। तो वो व्यक्ति जल्दी से पहुंच जाता है सबसे पहले, और सबसे पहले पहुंच के कहां बैठता है? पीछे बैठता है। कई बार आप क्लास के सबसे पहले आते हैं, लेकिन बैठेंगे कहां? पूरा किसी कोने में, दीवार के पास। तो ऐसे ये व्यक्ति सबसे पहले आया था, क्योंकि इसको तो दवाई चाहिए थी, तो आके बिल्कुल दीवार के साथ सट के बैठा हुआ था। और फिर बहुत सारे शिष्यगण आ गए, भीड़ हो गई, टेम्पल हॉल फुल हो गया, और जो महाशय थे महाराज, उन्होंने प्रवचन देना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो कृष्ण कथा का वर्णन करते जा रहे थे, वैसे वैसे इसके जो विचार है, भोग करने के विचार है, जहां कृष्ण तहां नाही माया लागिका, माया मीन्स क्या? भोग करने की जो भावना है वो वास्तव में माया है। तो ये जो माया के विचार, भोग करने के विचार उस व्यक्ति के हृदय में, मन में इतने अधिक भरे हुए थे, जिसके कारण वो अपनी नींद भूल गया था। तो जब महाशय कथा कर रहे थे, कथा इतनी ऊंची जा रहे थे, और ये पीछे बैठ बैठ के सुनते जा रहा था, सुनते सुनते बाकी सारे विचार चले गए और पूर्ण रूपे में खराटे लेने लगा। तो जो गुरु के प्रिय शिष्य बैठे थे, उन्होंने सोचा अरे गुरु तो कभी तो आते हैं हमारे आश्रम में, और अभी आज खराटे ले रहा है, तो गुरु कह सकते कि कैसे कॉन्ग्रीगेशन है आपका। तो वो दो चार शिष्य गए उनके पास, दो ऐसे दोनों और बैठे हैं, और उनको चिकोटी चिकोटी ऐसे ले रहे थे, हिला हिला कर उठा रहे थे। गुरुदेव ने कहा अरे उसको वैसे ही सोने दो, वो सही स्थिति में है, उसको हिलाओ मत। तो क्लास खत्म भी हो गई और सारे लोग चले गए, क्योंकि सुबह तक वो व्यक्ति वहां बैठा हुआ था, उसके लिए फैन भी अरेंज कर दिया था उस गुरु ने, और वो पूर्ण रूप से निद्रा का आनंद ले रहा था। और सुबह जब हो गई, दौड़ते दौड़ते गुरु के पास, उस महाराज के पास पहुंचता है, और वास्तव में वो कहता है कि आपकी ये जो दवाई है वो मुझ पर काम कर रही है, इसके कारण इस दवाई का सहारा लेते लेते उसके अंदर किस चीज का जन्म हो गया? श्रद्धा का जन्म हो जाता है, और श्रद्धा उदित हो जाती है उस व्यक्ति के अंदर, और धीरे धीरे वो भगवत भक्ति को क्या करता है? प्रगाढ़ता से पकड़ लेता है। इसलिए चाहे आपने कितने भी दुर्गुण आदि क्यों ना हो, लेकिन हमें अपनी श्रद्धा को बलवान करना है, तो एक ही उपाय है, भगवान के उन्नत भक्तों से हमें कृष्ण कथा को गंभीरता से सुनना होगा। और जब हम कृष्ण कथा को, भगवान के वर्णन को, भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि को सुनते हैं, तो हमारे हृदय में क्या होती है? श्रद्धा का उदय हो जाता है, कौन से श्रद्धा का उदय हो जाता है? तो शास्त्र कहते हैं कि हमारे हृदय में जो शास्त्रीय श्रद्धा है उसका उदय होता है। दो प्रकार की श्रद्धा है, एक है लौकिक श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा में जो जन सामान्य लोग चर्चा करते हैं उनके वचनों पर हमें विश्वास हो जाता है। और दूसरी शास्त्रीय श्रद्धा क्या है? साधु गुरु और शास्त्र के वचनों में दृढ़ श्रद्धा। हाँ, ये चीज जिस प्रकार से शास्त्रों में वर्णन आता है श्रीनिवास ठाकुर का। श्रीनिवास ठाकुर जब नवद्वीप में निवास कर रहे थे, बल्कि श्रीनिवास ठाकुर नवद्वीप में तब तक रहे जब तक चैतन्य महाप्रभु थे। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया, श्रीनिवास ठाकुर ने नवद्वीप को छोड़ दिया अपने चार भाइयों के साथ और वो वहां से कुमारहट जाकर रहने लगे। लेकिन एक दिन चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से संन्यास लेकर वापस आ रहे थे वृंदावन जाने के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर से कुमारहट गए और वहां श्रीनिवास ठाकुर को मिले। श्रीनिवास ठाकुर इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा उनके अंदर थे, किसके लिए? भगवान श्री चैतन्य देव के लिए और दूसरा शास्त्रों के वचनों के लिए। तो ऐसे श्रीनिवास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं और चैतन्य महाप्रभु मिलते ही उनसे पूछते हैं, क्योंकि श्रीनिवास ठाकुर एक गृहस्थ थे और वो निरंतर कृष्ण के नामों का कीर्तन करने में लगे रहते थे। बल्कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने से पहले ये श्रीनिवास ठाकुर अपने अन्य तीन भाइयों के साथ सदैव नाम कीर्तन करते थे और विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया और एक दिन श्रीनिवास ठाकुर के घर पहुंचे, तो चैतन्य महाप्रभु उनके साथ वार्तालाप करते हैं। तो चैतन्य भागवत से मैं पढ़ता हूँ, एक दिन प्रभु श्रीनिवास रस ही व्यवहार कथा के शुभ कहे नाने ब्रह्म। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु श्रीनिवास ठाकुर को एकांत में ले जाते हैं और कुछ ग्रस्त जीवन की चर्चा उनसे करते हैं। प्रभु बोले, तुम्हें देखी को था होना चाहो के मते वा कुलाई वा के मते कुलाओ। उन्होंने कहा, हे श्रीनिवास, मैं तब से देख रहा हूं जब से नवद्वीप में था, तुम तो ये गृहस्थ हो, अपना अपना जो भरण पोषण है उधर निर्वाह वो करने के लिए तुम घर से बाहर कभी नहीं जाते हो। मैं सोच रहा हूं कैसे तुम अपने परिवार का भरण पोषण करते हो। श्रीनिवास बोले, न प्रभु कोथा हो जाए ते नाले हमारा चित्त कभी भंतो माते। श्रीनिवास ठाकुर कहते कि प्रभु, मेरा चित्त बाहर जाने के लिए राजी नहीं होता, मेरा चित्त तो सदैव आपका गुण कीर्तन आपका नाम कीर्तन करने में लगा रहता है और बाहर जाने के लिए मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं होती है ना। प्रभु बोले, परिवार अनेक तुमार निर्वाह के मते हमें आई बसवार। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे श्रीनिवास, तुम्हारा तो इतना बड़ा परिवार है और इतने परिवार को कैसे पालन पोषण करते हो। श्रीनिवास ठाकुर थे, उनके और तीन भाई थे, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, इतना बड़ा परिवार था और कोई भी कार्य नहीं करता था। तो चैतन्य महाप्रभु कहते, इतना बड़ा परिवार होकर उनका पालन पोषण कैसे करते थे। श्रीनिवास वाले ने जा रहा अदृष्ट जा था के सही हरी बेकमेरे बेक जेते पाके। तो श्रीनिवास ठाकुर कहते हैं, जिसके भाग्य में जो है वो उस व्यक्ति को निश्चित रूप से मिलने वाला है, उसके लिए अत्यधिक प्रयास क्यों करना है। और वही बात नारद मुनि प्रथम स्कंद में कहते हैं कि संसार में जो दुख है वो स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में आता है, तो फिर हमें सुख प्राप्ति करने के लिए क्यों इतना उद्यम करना है, क्यों इतना प्रयास करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु आगे उनसे बात करते हैं। प्रभु बोले, तबे तुम्हें करह संन्यास ताहना पारिभु बले न श्रीनिवास। तो श्रीनिवास ठाकुर को महाप्रभु कहते हैं कि श्रीनिवास, अभी तुम कहां जाना भी नहीं चाहते अपने उदर निर्वाह के लिए, तो सबसे अच्छा यही है कि तुम संन्यास ग्रहण करो प्रभु। तो श्रीवास ठाकुर कहते हैं कि मैं संन्यास भी ग्रहण नहीं करूंगा। प्रभु बोले संन्यास ग्रहण ना करीबा, भिक्षा करीते वो कारो द्वारे ना जाएगा। तो श्रीवास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तुम संन्यास भी नहीं ग्रहण करोगे, भिक्षा मांगने के लिए दूसरे के द्वार में भी नहीं जाओगे, हाँ तो फिर कैसे तुम्हारा जीवन आगे बढ़ सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु को वो कहते हैं, हाँ फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा सोचो कि तुम सोच रहे होंगे कि कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में आकर कुछ तुम्हें दे दे, और कभी ऐसा हो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे घर भी ना आ जाए तुम्हें कुछ देने के लिए, तो तुम क्या करोगे। श्रीवास ठाकुर खड़े हो गए, जैसे महाप्रभु ने बोला ना तुम तो बाहर भी नहीं जाओगे, भिक्षा भी किसी से नहीं मांगोगे, और तो ये तुम्हारे घर में भी नहीं आएगा तुम्हें भोजन देने के लिए, तो क्या करोगे। श्रीवास ठाकुर खड़े हो जाते हैं और जोर से तीन बार तालियां बजाते हैं। जैसे तीन बार तालियां बजाए चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, प्रभु बोले एक दुई तीन जय करेला किया तैयार बल के ने ताली दिला। उन्होंने कही एक दो तीन क्या अर्थ है इसका, क्यों तालियां बजाई बताओ मुझे। तो श्रीवास ठाकुर कहते हैं यही दृढ़ अमार मेरा ये निश्चय है, क्या मेरा दृढ़ व्रत है, मुझ में इतना फेथ है एक चीज में कि तीन दिन तक मैं उपवास करूंगा, यदि कोई व्यक्ति नहीं आएगा मेरे घर में भी मुझे देने के लिए। कितने दिन उपवास करूंगा, तीन दिन के लिए, अपने परिवार के साथ, पत्नी भाई बच्चों आदि के साथ, लेकिन आपका नाम कीर्तन नहीं छोड़ूंगा। तो जब श्रीवास ठाकुर ने कहा तीन दिन में उपवास करूंगा, और फिर महाप्रभु कहते उपवास करने के बाद क्या करोगे आगे, तो श्रीवास ठाकुर कहते हैं तबे सत्य कहो खंड बांधिया गलाय, प्रवेश करे मोहे सर्वथा गंगाय। फिर बहुत करुणापूर्ण वचन उन्होंने कहे। श्रीवास ठाकुर ने कहा तीन दिन उपवास करने के बाद सबके गले में क्या बांध दूंगा, घड़ा बांध दूंगा, और घड़ा बांध के हम सारे कहां कूदेंगे, गंगा में कूद जाएंगे। हाँ जैसे ही श्रीवास ठाकुर ने गंगा में कूदने का नाम लिया, फिर चैतन्य महाप्रभु जोर से गर्जना करके खड़े हो गए, मानो कोई सिंह जोर से गर्जना कर रहा है। हुंकार करिया उठे सचिर नंदन, हाँ सचिव के जो पुत्र है चैतन्य देव जोर से गर्जना करके उठ गए, खड़े हो गए। प्रभु बोले की बनेला पंडित श्रीवास, तोर की अनेरा जन्म है वे उपवास। कहते हैं महाप्रभु कहते कि क्या बोल रहे हो, तुम्हें उपवास करना पड़ेगा, और वो भी भोजन के लिए, अन्न के लिए। महाप्रभु को ये सहा नहीं गया। महाप्रभु फिर जोर से चिल्लाते हुए बोले यदि कदाचित लक्ष्मी वो भिक्षा करे तथापि दारिद्र नहिव तोर धरे। महाप्रभु ने अपने दोनों हाथ ऊपर करके कहा हे श्रीवास, ये जो नारायण की पत्नी है ना लक्ष्मी, जिसकी कामना सारा जगत करता है, उसको भी हाथ में कटोरा लेकर भिक्षा मांगने पड़े एक दिन, लेकिन तुम्हारे घर में किसी चीज के कमी नहीं होगी। महाप्रभु ने कहा, क्योंकि महाप्रभु कहते हैं श्रीवास भूल गए, मैंने गीता में प्रवचन देकर बोला था, क्या बोला था। महाप्रभु कहते हैं मैंने गीता में कहा था जे जे जने चिंते मोरे अनन्य हरिया तारे विक्या देव मोहे माथा यवहिया। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रीवास तुम कैसे भूल गए कि मैंने भगवत गीता में बोला था कि जो जो भक्त अनन्य भाव से मेरा भजन करता है उसकी आवश्यकता है मैं अपने सर में वहन करके ले जाता हूं। तो श्रीवास ठाकुर आनंदित हो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के इस वचनों से, और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे श्रीवास तुम्हारा इतना अधिक दृढ़ विश्वास है मुझ में, दृढ़ श्रद्धा है। हाँ तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कितनी दृढ़ श्रद्धा श्रीवास ठाकुर के थे कि यदि अनन्य भावना से मैं भगवत भजन करूंगा तो मैं अपने भौतिक जीविकोपार्जन के लिए मुझे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये उतना उनका दृढ़ विश्वास था श्रीवास ठाकुर का। और श्रीवास ठाकुर का इस चीज को जब महाप्रभु ने सुना तो श्रीवास ठाकुर ने और एक उनको वर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने और एक वर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये जो अद्वैत आचार्य है ना, अद्वैत आचार्य और तुम्हें मैं वर देता हूँ कि तुम्हारा शरीर कभी बूढ़ा नहीं होगा। हाँ, जर्जर था बुढ़ापा आपको कभी छुएगा नहीं। हाँ, तो महाप्रभु ने उनको ये वर दिया था। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के वचनों में ऐसी स्ट्रॉन्ग श्रद्धा थी श्रीवास ठाकुर को और महाप्रभु के अन्य भक्तों को भी। तो उसी प्रकार से हमें भी जो श्रद्धा है वो शास्त्रों में, साधु में और गुरु के वचनों में विकसित करनी चाहिए। क्यों हम में ऐसा दृढ़ श्रद्धा का भाव नहीं आता? क्योंकि हमारे हृदय में क्या है? कपटता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, भगवत भक्ति में आने के बाद यदि कोई व्यक्ति अपने हृदय में कपटता का भाव रखता है तो वो कभी भी कृष्ण भक्ति अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकता। कपटता का भाव, जैसे चैतन्य भागवत में और एक लीला आती है हरिदास ठाकुर के बारे में। हरिदास ठाकुर जब एक बार किसी जगह से ऐसे चलते हुए बाहर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो गए हैं और इकट्ठा होकर एक सपेरा, हाँ सपेरा एक गीत गा रहा है और एक सांप वहां नाच रहा है और लोग मृदंग गाने बजा रहे हैं। तो वो सपेरा क्या गा रहा था? भगवान कृष्ण की कालिया लीला का वर्णन कर रहा था। जैसे हरिदास ठाकुर उस भीड़ में आए और उन्होंने उस कालिया लीला को सुना तो हरिदास ठाकुर का हृदय वृंदावन की ओर दौड़ने लगा और भगवान की उस लीला को सुनकर हरिदास ठाकुर भावावेश में आ गए। भावावेश में आकर वहां मूर्छित हो जाते हैं और फिर उठ जाते हैं, फिर हरिदास ठाकुर नाचने लगते हैं। हाँ, कृष्ण की लीला को सुनकर नाचते हैं, नाचते हैं, नाचते हैं और जितने भी लोग एकत्रित हुए थे वो सारे लोग आकर हरिदास ठाकुर के चरणों की धूलि लेते थे, अपने माथे में लगाते थे। अभी वहां एक ब्राह्मण भी खड़ा था। वो ब्राह्मण ने सोचा, अरे ये तो नीच व्यक्ति इतना नाच रहा है, इसको इतनी प्रशंसा मिल रही है, लोग इसके चरण छू रहे हैं, धूलि लगा रहे हैं, मैं तो ब्राह्मण हूं, ये तो मुस्लिम यवन है, इसको इसके नाच को देखकर इतना इसको आदर सम्मान आदि मिल रहा है तो मैं नाचूंगा तो कितना मिलेगा मुझे। हाँ, तो ये नाच इसलिए नहीं रहा था। किसलिए नाच रहा था? इसलिए नाच रहा था प्रतिष्ठा के लिए। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते इतने सारे अनर्थज हैं। भक्तिनाथ ठाकुर कहते दो ही अनर्थज प्रमुख हैं जो एक प्रीचर को पकड़कर डुबो देते हैं संसार में। कौन से हैं? कहते पहला है लस्ट और दूसरा है प्रतिष्ठा। ये दो अनर्थ सबसे प्रबल है। यदि व्यक्ति उन्नति करता है भगवत भक्ति में तो उस व्यक्ति के पीछे ये दो अनर्थ हाथ धोके लगते हैं, एक लस्ट डिजायर्स और दूसरा है प्रतिष्ठा, दूसरों से प्रशंसा का, प्रशंसा प्राप्ति की भावना। तो ऐसे ही जो ब्राह्मण जब देखा कि हरिदास ठाकुर नाच रहे हैं, उनकी इतनी स्तुति हो रही है तो मेरे क्यों नहीं। हमारे अंदर भी ऐसी कपटता की भावना होती है। हाँ, जब हम देखते हैं कि अरे दूसरों का इतना स्वागत हो रहा है, उसका इतना सम्मान हो रहा है, उसकी इतनी प्रशंसा हो रही है, तो हम भी भक्ति में जीवन में एक दूसरे की नकल करते हैं। उसने ऐसी शिखा रखी है तो मैं भी वैसी शिखा रखूंगा, क्योंकि मुझे उसी दृष्टिकोण से देखेंगे। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर जब नाच रहे थे कृष्ण के लिए और ये ब्राह्मण नाचने जा रहा था किसके लिए? अपने लिए। तो ये ब्राह्मण उस राउंड के बीच में गया, सारे लोग खड़े थे, वो सपेरा कालिया लीला का वर्णन कर रहा था, उसके संगी बजा रहे थे मृदंग आदि और ये नाचना शुरू किया तो सपेरे को उसने तुरंत पहचान लिया। उसने पहचानते ही एक छड़ी उठाई अपने हाथ में और ऐसे वो नाच रहा था, छड़ी उठाकर वो ब्राह्मण को इतना पीटने लगे, इतना मारने लगे
शुरुआत में तो उसने सहन कर लिया। हाँ, व्यक्ति थोड़ा सहन करता है कि दिखाऊंगा कि कितना मैं अच्छा महान भक्त हूँ, भक्त सबको सहन कर लेता है। उसने सोचा चलो चार पांच छड़िया खाऊंगा तो शांत हो जाएंगे सब, और वो सारे सोचेंगे देखो मार खा के भी नाच रहा है। ऐसे होते ना, कोई बीमार होता है तो भी नाचता है, तो लगता है कि सबको पता चलना चाहिए मैं बीमार हो फिर भी नाच रहा हूँ। तो भक्त लोग कहेंगे प्रभु देखो आप कितने पावरफुल डिवोटी हो। तो इससे शुद्धि नहीं होगी। शुद्धि तभी होगी जब हम निष्कपटता से भगवान और वैष्णव की प्रसन्नता के लिए चाहे वो नाचते हैं या सेवा आदि करते हैं। तो ये ब्राह्मण नाचने लगा तो उस सपेरे ने छड़ियों से इतना मारा इतना मारा इतना मारा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती उस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं चैतन्य भागवत के, को माँ का नाम लेके पुकारने लगा अपने, जैसे कोई किसी को पीटते तो अपनी माँ का बाप का नाम लेता है, वैसे वो ब्राह्मण भक्ति सिद्धांत नाराज उस प्यार के तात्पर्य में कहते हैं कि वो अपने माँ का बाप का नाम लेकर चिल्लाने लगा और फाइनली वहां से भाग गया। हाँ, तो वृंदावन दास ठाकुर वहां कहते हैं कि इस प्रकार से जो व्यक्ति निष्कपट भाव से ये सकल दाम्बे केरा कृष्ण प्रति नाय अकैतव है जैसे कृष्ण भक्ति पाए। तो ऐसे दाम्बिक व्यक्ति कभी कृष्ण के प्रति प्रेम की अनुभूति जीवन भर नहीं कर सकता। अकैतव, अकैतव मतलब कपटता से रहे के लिए भगवत भजन होगा, आध्यात्मिक एक्टिविटीज होगी, तभी कृष्ण की जो महती कृपा है वो प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार से हम भक्ति में आने के बाद भी ये कपटता हमारे हृदय में बनी रहती है, जिसके कारण हमारा जो दृढ़ श्रद्धा है साधु गुरु और शास्त्रों के वचनों में नहीं होता। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि यदि कोई भगवत भक्ति में आता है और कपट पूर्ण भाव अपने हृदय में धारण करके रखता है, उससे अच्छा है कि व्यक्ति किसी और पशु के योनि में हो, वो उससे श्रेष्ठ है। यदि भगवत भजन कर भगवत भजन में आने के बाद भी कपटता को हम अपने हृदय में धारण करते हैं, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि सरलता ही क्या है वैष्णवता है। हाँ, इसलिए हमें अपने हृदय को सरल बनाना चाहिए, निष्कपट बनाना चाहिए। हाँ, नहीं तो हम भक्ति में आने के बाद भी हमारे अंदर बहुत सारे हेतु होते हैं जिनकी पूर्ति के लिए हम भगवत भक्ति का सहारा लेते हैं। मैं कई बार उसको भी बताता हूँ, बकर धार्मिक विराट वैष्णव गौरवोद महाराज कई लेक्चर्स में बोलते थे, ये उड़िया में एक कहावत है बकर धार्मिक विराड़ी वैष्णव। वो कहते थे कि जो बगुला था वो एक दिन भक्त बन गया और एक बिल्ली थी वो भी क्या बन गई फुल टाइम डिवोटी बन गई। तो वो ऐसा उसको बड़ा अच्छे से सुनाते थे इस दो स्टोरीज को। वो कहते थे बकर धार्मिक एक बगुला था जो बिल्कुल शुभ्र वस्त्र धारण करता था, जैसे कोई भक्त है सफेद धोती कुर्ता चादर आदि डाल के, तिलक सफेद बाल भी सफेद। तो कहते थे बकर धार्मिक मतलब बगुला दूर से देखो तो पानी में एक पाव पर खड़ा है और बिल्कुल समाधि की अवस्था में है, उसका एक पाव ऐसे ऊपर होता है मानो कि जप कर रहा हूं और इतना ध्यान मग्न है, आंखें भी अर्ध में ढकी हुई है और सारा ध्यान कहां लगा हुआ है किस पर, मछली पर। बाहरी रूप से तो बगुला भक्त बन गया है, तो बगुले ने सोचा कि अरे इतना धूप में खड़ा रहता हूँ, ठंडे में खड़ा रहता हूँ, बारिश में खड़ा रहता हूँ, एक मछली के लिए, एक मछली पूरे दिन में एक मछली मिलती है। और सारी खड़ा रहते मछलियां गायब हो जाती थी। उसने सोचा सबसे अच्छा है भक्त बनना। बगुले ने दूसरे दिन पूरा हेडशेव करके अच्छे वस्त्र धारण करके कंठी बड़ी बड़ी जैसे मैंने डाली है बड़ी बड़ी माला धारण करके आके पानी में खड़ा हो गया और चोच इतनी लंबी थी और चोच में भी जाले लगा दिए और जब पानी पिए तो कोई मछली अंदर नहीं जानी चाहिए, इतना इतना सावधान था तो सारे पक्षियों ने इनको लगा कि अभी ये पग बन गया है, अभी हम सुरक्षित हैं। तो ये तो उसका क्या था, बाहरी पहनावा था, लेकिन अंदर क्या चल रहा था कि जैसे ही मछली आगे उसके आसपास बहुत इजीली घूमने लगे, और कभी कभी देखता था कि अरे मैं जब भग नहीं था तो मछलियां नजदीक नहीं आती थी, अभी भग बन गया है तो सारी मछलियां नजदीक आ रही हैं। तो फिर बीच बीच में क्या करता था, जाली को थोड़ा सा आटा देता था, अंदर डालता था, मछली खा लेता था, फिर जाली लगाता था। हाँ, तो ऐसी स्थिति थी। वो कहते हैं कि बकर धर्म इसको कहते हैं कपटता की परम उच्च सीमा, और दूसरा वो कहते हैं बिराड़ी वैष्णव। उड़िया में बिराड़ी का मतलब होता है बिल्ली, तो जो बिल्ली है वो भी भक्त बन गई। बिल्ली को लगा चूहे पकड़ना अपने आप में बहुत बड़ी जंग है, हाँ सरलता से जो भोजन मिलता नहीं है, तो बिल्ली ने सोचा कि क्या करूं क्या करूं। तो उसने सुना होगा किसी से कि भक्त बनने से सारी चीजें सरल हो जाती हैं, तो उसने भी बिल्ली ने भी वही चीज अपनाई जो बगुले ने अपनाई थी। उसने भी हेडशॉट कर दिया, माला धारण कर दी, और बिल्कुल ध्यान मगना इसे जप करने की मुद्रा में बैठे रहते थे, हिलती रहते थे, और बीच में चूहे को देखते थे। किसको देखते थे? चूहे। आज ऐसे चूहा कोई घुसे घुसे नहीं, वहां जाए तो तुरंत देखते थे, पकड़ लेते थे, टक अंदर डालते थे, फिर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से गौर गोविंद महाराज कहते थे कि हमें उस ये दोनों दोनों के लिए बोला, स्त्री के लिए और पुरुष के लिए, प्रभु जी के लिए और माता जी के लिए। वो बगुले का उदाहरण प्रभु के लिए है, बिल्ली का उदाहरण माताओं के लिए उन्होंने दिया है। इस प्रकार से वो कहते थे कि भगवत भक्ति में आने के बाद हम भूल जाते हैं, और हम भौतिक संसार की थोड़ी थोड़ी सुविधाओं के लिए, छोटे छोटे भोगों के लिए क्या हो जाते हैं, बगुले बन जाते हैं या बिल्ली बन जाते हैं। और ये कपटता जब हमारे हृदय में आता है तो फिर किसी और चीज को स्थान नहीं होता, फिर हम हर कार्य में कपटता का आश्रय ग्रहण करते हैं, फिर अपना पूरा जीवन बिता देते हैं कृष्ण भक्ति के बिना। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज अपने भक्तों को कहते थे कि भगवत भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है वो है कापट्य। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, कापट्य हैल दूर बाढ़य प्रेमेर पूर। मतलब कपटता जब हृदय से दूर हो जाएगी, अब बाढ़े में बढ़ेगा प्रेमेर पूर, पूर मीन्स बाढ़, कि आपके हृदय में भगवत आसक्ति की बाढ़ आ जाएगी। अभी क्यों नहीं आसक्ति की बाढ़? क्योंकि हमने भक्तिमय कार्यों में कपटता का आश्रय लिया है। और वास्तव में जो छोटा बच्चा होता है ना, उसके अंदर कपटता नहीं होती, उसको उसके हाथ में लड्डू है, लड्डू मांग भी लोगे तो वो दे देगा, लेकिन बड़े व्यक्ति से मांगेंगे तो बहुत बहाने बनाएगा, हाँ कपटता है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे कपटता हमारे हृदय में क्या करती है, आश्रय ग्रहण करती है। इसलिए हम भगवान का जो नाम है वो सही रूप से या अर्थ की भावना से उच्चारण नहीं कर पाते। इसलिए ये तभी संभव है जब हम क्या करेंगे, कपटता को दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें भगवत भक्तों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, और विशेष रूप से उनके द्वारा श्रवण करना चाहिए, एक निष्ठ होकर गंभीर होकर। और दूसरा है सुबह के समय में भगवान का जो पवित्र नाम है उसका उच्चारण करना चाहिए। और फिर भी हमें इससे बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि फिर कृष्ण के सामने जाकर रोना चाहिए, कहते बोले वहे कृष्ण हमें तुया दास, रोना चाहिए। क्या रोना चाहिए? कहते बोले मीन्स रोते रोते बोलना चाहिए, आमे तुया दास तुम्हारे चरण छाड़ी हैनु सर्वनाश, हे कृष्णा आपके चरणों को मैं छोड़ चुका या छोड़ा हूं जिसके कारण मेरा सर्वनाश हो रहा है। हाँ, तो इस प्रकार से जब हम भगवान के पास जाते हैं, उनके चरणों में जाकर रोते हैं, हाँ, तो ये जो कपटता की जो भावना है हमारे हृदय से क्या होती है, निकल जाती है। इसलिए परम आवश्यक है यदि हम इतने सारे भावों का वर्णन तो यहाँ किया गया है, लेकिन हमारे जीवन में भाव का अभाव है, तो भाव आदि तो बहुत दूर है। सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा किसमें होनी चाहिए? साधु सबसे पहले, गुरु और फिर है शास्त्र। साधु गुरु शास्त्रों के वचनों में श्रद्धा का विकास करना ही आध्यात्मिक उन्नति है। जिस प्रकार से हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में और कई सारे वैष्णव के जीवन में, जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद को अपने गुरु के वचनों में श्रद्धा थी, और श्रद्धा यदि है तो उस व्यक्ति के पास बल आ जाता है बड़े बड़े बाधाओं को पार करने का, बड़े बड़े पहाड़ों को लांघने का। तो श्रद्धा विकसित होती है जब किसी श्रद्धावान व्यक्ति का संग करते हैं। इसलिए नास्तिक व्यक्ति के हृदय में भी कृष्ण के प्रति श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है? जब वो व्यक्ति प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ता है, क्योंकि प्रभुपाद के हृदय में इतनी अधिक श्रद्धा है। इसलिए प्रभुपाद उस पोयम में कहते हैं ना, भक्ति नाही ज्ञान नाही नामे खूब दरो, भक्ति वेदांत नाम एवे सार्थक करो। मुझ में ना भक्ति है ज्ञान है, मेरा भक्ति वेदांत नाम आप सार्थक कर सकते हो, लेकिन एक चीज है, आपका ये पवित्र नाम है ना, उसमें मेरी प्रगाढ़ श्रद्धा है, प्रगाढ़ आसक्ति है। तो श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को हम नियमित रूप से प्रतिदिन बिना किसी बाधा के रोज अध्ययन करते हैं अधिक से अधिक समय, तो हम देखते हैं कि कितना अधिक जो श्रद्धा का विकास हमारे हृदय में होता है। और यदि हम नहीं पढ़ेंगे प्रभुपाद के ग्रंथों को तो फिर बहुत ही मुश्किल है। श्रद्धा तो बस काम चलाओ श्रद्धा होगी, हम अपने दिन बस कृष्ण भावना में बिताते रहेंगे और अंतिम समय में देखेंगे कि अरे मुझ में किसी चीज की कमी है। तो इसलिए श्रद्धा का तीव्र विकास हम चाहते हैं तो श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अधिक से अधिक अध्ययन करना चाहिए। और साधु गुरु के जो वचन है उनको निष्कपट भावना से श्रवण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज चैतन्य चरितामृत के श्री प्रभुपाद के निदाय गौर प्रेम।